गौड़ीय ब्रह्म अथवा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय विशेषता रूपानंद गुरु वर्ग वर्ग एक प्रधान प्रतापशाली आचार्य संक्षेप थे मैं जीवन चर्च कुछ आलोचना करो दो बात जरा था विशेष वैशिष्ट जीवन चरित्र संबंधे हमारा विचार कर अपना सब जाने आप लोग सब जानते हैं उनका दुर्भाव पूर्व बंगाल में बनारी पाड़ा जी बनारी पाड़ा में शरतचंद्र गुरु ठाकुर का और माता
भुवन मोहिनी
भुवन मोहिनी देवी के संतान के रूप में जन्म के समय के उनके पितामह इत्यादि प्रसिद्ध योगी नमूने से प्रसिद्ध योगी और पीछे से भक्त थे उनके शिष्य थे नाम याद नहीं उस समय बहुत प्रसिद्ध है ऐसे कि विद्यासागर जी सभी छोड़ करके जब जा रहे थे तो वहीं से मेदिनीपुर में विद्यासागर मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा जा रही है स्वर्ग में जा रही है। तो पीछे से लोगों ने टेलीफोन इत्यादि किया या टेलीग्राम किया तो मालूम पड़ गया ठीक उसी समय ऐसे उनका नाम मुझे याद नहीं। उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी के पिताजी थे, बचपन से ही परम धार्मिक थे। एक छोटी एक बड़ी सी पक्षी उनको महाराज जी को तेल लगाकर बाहर छोड़ दिया गया धूप में
सूख में सूख खुला।
तो उस समय में एक बड़ी सी पक्षी तीन पक्षी आकर उसको पीछे कर देते
और पीछे
बड़ी सी तीन पक्षी आकर के उनको पकड़कर आकाश मार्ग में ले गए। जब घर वाले रोने लगे तो उनको पानी के ऊपर में थोड़े से पानी के ऊपर में उनको धीरे से छोड़ करके और उड़ गई। ये सब लोग दौड़ करके बच्चे को उठा लिए। ये 6 महीने तक कुछ बोलते नहीं थे, कोई बोले ही नहीं निकलते।
6 महीने
6 साल तक
6 साल नहीं
6 महीने में बच्चा तो बोलना ही नहीं जानता है।
नहीं जानता हम माँ नहीं बोलता मैंने किसी उम्र तक ये नहीं बोलते थे। तो मैया किसी बागदी के घर में मैंने नीच जाति के घर में जाकर वहाँ से भात मांग करके ले आए किसी मुसलमान
फकीर के कहने
फकीर ने कहने पर उनके घर से जा करके मांग करके ले आई और बच्चे को खिला दिया तो वो बोल दिया। अब न जाने इस सब कथाओं का उद्देश्य क्या है। महापुरुषों के जीवन में ऐसे ऐसे सब तो बचपन से ही इतने ही सुंदर थे जो उनका नाम जूनाकी जूनाकी पोकार वो जलता है पीछे से ऐसे परम सुंदर थे और इतने मजबूत देखने में और बलवान और सुंदर सुकांत थे जो लोग उनको भीम कहते थे। 5 भाई थे, ये लोग 5 पांडव थे। बड़े भाई नाम भक्ति
केवल
केवल और लोग भी मारा बचपन तो उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। वो बड़े विद्वान आदमी थे, हाई स्कूल के उस समय में प्रधान अध्यापक थे, अंग्रेजी संस्कृत बांग्ला इत्यादि भाषा में बड़े पारंगत थे विद्वान। उनको ज्योतिषी कहते थे और घर का जितना काम होता था सब यही संभालते थे। पिताजी के साथ में धार्मिक महोत्सवों में जाते थे, यहाँ पर गीता भागवत रामायण पुराण इत्यादि होता था वहाँ पर जाते थे और सुनते थे। पिताजी इनको कंधे पर बैठा करके ले जाते और नहीं ले जाने से रोते थे और कोई भाई का ही बना नहीं था इन प्रेम का। धीरे धीरे और सब बड़े थोड़े से बड़े हुए बड़ी प्रखर बुद्धि। निम्न क्लास में पढ़ते समय में भी उन्होंने गांव में जितने गरीब दुखी लोग रहते एक अपनी टोली बना ली संस्था बना ली और गरीब लोगों को देख करके उनकी सहायता करते थे। उनकी मैया बड़ी तेज थी, नहीं चाहती थी कि उनका कोई बच्चा शाम को कोई शाम के रात होने पर कोई इधर उधर घूम ये बच्चों के ऊपर में कड़ा शासन करते। जमींदार की लड़की थी, उनके पिताजी जमींदार तो थे कि वो लेता जो कुछ संभालना होता इनकी मैया संभालती बड़ी तेज थी क्योंकि पिताजी के घर में भी वही संभालती। इसलिए एक दिन उनसे पूछा कि तुम कहाँ गया था, एक हाथ में लठियाँ लेकर क्या मैंने छड़ी और दरवाजे पर खड़ी होकर के प्रतीक्षा कर रही थी। जब आए तुम कहाँ कहाँ अभी तक तो ये बोले नहीं, बोलता क्यों नहीं है शासन किया। उन्होंने कहा जैसे एक बुढ़िया है उसको बहुत तेज बुखार, चार पांच दिन से उसके घर में खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है। तो तुमने हमको जो इतना दिन तक पैसा दिया था, संग्रह करके रखा था, वो सारा पैसा लेकर के और कुछ चावल इत्यादि सब इकट्ठा करके उसके लिए दवा की व्यवस्था करने और खाने की व्यवस्था करने के मैंने लग गया, इसलिए देरी हो। तो सुन करके उनकी मैया रोने लगी और बहुत स्नेह से घर में, तब से इनके ऊपर में प्रधान स्नेह के ऊपर में सब भाइयों के ऊपर से, इसलिए बचपन से ही बड़े दयालु लोगों का दुख दे करके द्रवित हो जाते। साधु गुरु वैष्णव के प्रति बहुत ही निष्ठा थी बचपन से ही, इसलिए पूर्वजन्म का संस्कार नहीं होने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता, भगवत भजन नहीं कर सकता। किसी के कुछ अवगुण नहीं देखते थे, केवल गुण ही देखते। और कुछ बड़े होने पर गांधी जी का नमक का आंदोलन चला स्वतंत्रता के लिए, उस पर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था। इंडिया में उसका उत्पादन कुछ नहीं, पैसा खर्च नहीं, ऐसे ही लोग घर में कर करके बना करके खाते थे, और वही लिवरपूल में जाता था और वहाँ से बन करके आता था, बहुत उसका मूल्य हो जाता था। इसलिए गांधी जी ने कहा हम देसी नमक खाएंगे, लिवरपूल से आकर के लौटा करके हम लोग किस लिए खाएंगे। किंतु गवर्नमेंट ने कहा दिया कोई नमक नहीं बना, क्योंकि उनका बिजनेस फेल हो जाए। इसलिए सारे भारतवर्ष में आंदोलन था, उसमें अभी छोटे से बच्चे थे 12, 14 या 15 वर्ष के, ये भी उसमें, और तब से उन्होंने एक अपनी संस्था बनाई और उसके हेड ये रहे, और स्वतंत्रता आंदोलन के वो जो तीन आदमी मारे गए बंगाल के,
विनय बादल दिनेश, विनय बादल दिनेश
और सुभाष चंद्र बोस पीछे पीछे, तो उपलों के पद पर क्रांतिकारी दल का गठन किया, और उसमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र भूमि में छिपा कर रखते, और 8 वर्ष को स्वतंत्र कराएंगे, उधर आसपास के लिए नेता बन गए छोटी उम्र में। ब्रिटिश कॉफी या पुलिस इनके पीछे लगी, और जब ये 18-20 वर्ष के हो गए तब तक भी उनका पता नहीं लगा सकते, उनके संबंध में कैसे छिप करके रहते थे और सबको ट्रेनिंग दे करके और कैसे किया किया जाए ये सब की व्यवस्था करते, इसलिए बहुत वर्षों तक उनको पता नहीं। जब उन्होंने मठ में 18 वर्ष की उम्र में 1918 या 16 में जब आए और कुछ वहाँ प्रकट रूप में कार्य इत्यादि करने लगे, तो उस समय में ब्रिटिश को पता लगा था इनके नाम से वारंट आया। वारंट आया तो प्रभुपाद जी के पास में आया, प्रभुपाद जी ने कहा जैसे है भर्ती तो वही है, किंतु वो तो सब छोड़ छाड़ करके घर बार और सब कुछ और राजनीति इत्यादि छोड़ करके वो तो एकदम भगवान का भजन करता है, बहुत कुछ ये करने पर कलकत्ते में बड़े बड़े लोग थे उनके माध्यम से, तब वो जा करके कहीं कैंसिल हुआ, किंतु गवर्नमेंट से इस पर्यंत उनको पकड़ नहीं सकता। बहुत योगदान था, बड़े अदम्य साहसी थे वो, किसी का भी समय भय नहीं करते, निर्भीक थे। इसके बाद में वो कॉलेज में वहीं पर बनारीपाड़ा कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से पढ़ाई सुविधा नहीं होती तो कलकत्ते में उत्तरपाड़ा में वो कॉलेज देख है, उत्तरपाड़ा कॉलेज, उसमें वो भर्ती हुए। तब तक उनके पिताजी का परलोक गमन हो गया था, अरे तुम सत्यपाल इधर आओ, इधर में बैठता अब आओ। एक वर्ष पढ़ने के बाद में उस समय में बीए श्रेणी में चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जाता था। उस समय लोग कुछ धार्मिक थे, समाज भी धार्मिक था, तो चैतन्य चरितामृत रखा जाता। चैतन्य चरितामृत देखने में एक धार्मिक पुस्तक साधारण रूप में है, किंतु इतना दार्शनिक तत्व है कि बड़े बड़े विद्वानों को इसमें प्रवेश नहीं। जब वो लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहे थे तो कुछ ऐसे प्रसंग आए जिस पर वो लोग बोल रहे थे, प्रिंसिपल या वहाँ के उस डिपार्टमेंट के ही दार्शनिक विभाग पढ़ा रहे थे चैतन्य चरितामृत या साहित्य में। तो उस समय आया जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। उसमें चैतन्य चैतामित में भी आया है बदंति तत्व विदस तत्म जद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। कुछ ऐसे श्लोक आए चैतन्य चैतामित में, ये सब किया। वो तो जब व्याख्या कर रहे थे तो उसमें तरह तरह के भूल, बिना गुरु परंपरा में आए हुए कोई भी इसका अर्थ ठीक से नहीं लगा सकते, समझ नहीं सकते, किसी के लिए संभव बात नहीं, इसलिए उसका अर्थ ठीक से नहीं कर सके। अभी तीन चार दिन आगे गोवर्धन के एक बड़े भारी पंडित आए थे हमारे पास, और जब हम उस काल के आचार्य हैं और भागवत हमने पढ़ा है कॉलेज अपने यहाँ पर संस्कृत पाठशाला में, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रवचन दूँ। मैंने कहा जैसे आप एक श्लोक का अर्थ बदला करके तब फिर यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे इसका अर्थ बदलाइए तो बदंती तत्व विदस तत्व जज ज्ञानम अद्वयम, श्लोक की बात छोड़ दीजिए, अद्वय ज्ञान की श्लोक आते हैं बदलाइए। तो उनके समझ नहीं कुछ नहीं आया। तो जब तक यदि किसी योग्य गुरु अपनी परंपरा खड़ा में आया हो और जब तक उसे श्रवण नहीं अच्छी तरह से किया है, भजन नहीं किया है, तो श्रीमद् भागवत के अर्थ या चैतन्य चैतामृत का वही अर्थ नहीं बदला। जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास, पहले तो लोगों को जो जीव किसको कहते हैं ये नहीं समझ में आएगा, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे प्रोफेसर हो। और कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, इसका क्या अर्थ करेगा? कहीं दर दर करने लगे, इन्होंने खड़े होकर ये प्रभुपाद के पास में उस समय में आए हुए थे, उनको सरोज वासनी उनकी पीसी उनको ले गई थी प्रभुपाद जी के पास में 16 वर्ष की उम्र में, उत्तर पावा कॉलेज से ही। प्रभुपाद जी ने इनको देख करके बहुत स्नेह किया। उस समय प्रभुपाद जी के पास में अधिक लोग नहीं थे, बहुत कम लोग, उल्टा डिंगी में गौड़ीय मठ स्थापित था। उस समय उनके पास में 4-5 आदमी केवल थे। प्रभुपाद जी घंटा बजाते थे और नरहरि प्रभु गुरु महाराज के एकांतिक बंधु गुरु भाई वो अर्चन करते थे, और अर्चन करने के बाद में जब भी आरती होती थी तो प्रभुपाद जी घंटा बजाते। उस समय ऐसे लोगों की कमी थी। और उसी समय में प्रभुपाद जी वो सरोज वासनी ने पूछा, आप तो जैसे कोई गरीब आदमी है स्वप्न देखता है लाख रुपए का, तो ऐसे कहते हैं कि मैं नवद्वीप के 9 द्वीपों में एक एक मठ करूंगा, और इसके बाद में बंगाल के जितने बड़े बड़े शहर हैं सब जगह में मैं मठ करूंगा, और इसके बाद में पृथ्वी में जितने शहर हैं बड़े बड़े सब देश हैं वहाँ पर गौड़ीय मठ स्थापित करके वहाँ से महाप्रभु जी की धारा का प्रचार करूँगा। तो पास में तो आपका कोई है नहीं, तो ये अभी 2-4 दिन हुआ था आए थे, कहे ये हमारा विनोद है देखा कर। उस समय 16 वर्ष की उम्र, ये विनोद है ये सब जगह हमारा करेगा। उस समय भी गुरु महाराज के ऊपर में उनकी कृपा बरसी उसी समय से, और उसी समय से और सबको आप कहते थे, बस इनको और एक
परमानंद
ये दो आदमी को तुम इत्यादि व्यवहार करते, तू ही
डोकला
इत्यादि व्यवहार करते और किसी को नहीं, और सब जितने भी शिष्य थे आप नहीं, मैं लोग कभी स्त्रियों को भी जो अपनी शिष्य थी उनको भी तुम ही कभी किसी को नहीं कहते, विशेष यदि कोई सेवक है आत्मसमर्पण किया हुआ है तब करते, तो उस समय में इनका संग करने से, इनके लेक्चरों को सुनने से, इनके बातों को सुनने से, तब उन्होंने जाकर के वहाँ पर कॉलेज में व्याख्या की। ये मेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदा, जीव का स्वरूप जो हम विश्व में जितने भी जीव हैं इनका स्वरूप कृष्णदास है, कृष्ण के सेवक है। कृष्ण को भूल करके इस माया में पड़ करके 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। यदि कोई कृष्ण का फिर भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो फिर वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। और यदि कोई जीवन भर में भगवान का भजन नहीं किया तो फिर नीचे की योनियों में पशु पक्षी की पतंग सुअर गधे घेड़े इसी के जोनी में भ्रमण करना। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास, यही उसका स्वरूप लक्षण। और कृष्ण तटस्था शक्ति भेदाधिक प्रकाश, हमारे समय से यह तटस्थ लक्षण होता है। कृष्ण से जीव का भेद भी है अभेद भी है। यह भेद और अभेद जीव मुक्त होने पर भी ये बना रहेगा, मुक्त होकर के कृष्ण के पास में जाने पर भी ये भेद और अभेद मिटेगा नहीं। गोलोक वृंदावन में जाने पर भी उनसे भेद नहीं रहेगा किंतु अभेद भी नहीं रहेगा, भेद बना रहेगा। जहां पर भेद और अभेद दोनों है वहां पर अभेद अभेद की कोई प्रतीति नहीं, भेद की
कई पागल लोग देखे
भेद देखा जाता है। हम लोगों में मान लिया कि विचार से हम लोगों में अभेद है, हम लोग सभी कृष्ण की भक्ति चाहते हैं, हम लोग सभी कृष्ण के दास हैं, फिर भी यूनिटी में भेद, एक आदमी हम कभी दूसरा नहीं है। तटस्थता माने कृष्ण की एक तटस्था शक्ति है, उससे सम्मिलित होकर के जब कृष्ण रहते हैं केवल उससे, उससे जो अंश पैदा होता है वो जीव कहलाता है। जब कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति के फ्लादनी संधिनी और संबित संधिनी और फ्लादनी से युक्त स्वरूप शक्ति से पूर्ण युक्त रहते हैं, तब उनके अंश को सर्वांश कहते हैं, स्व अंश। और जब केवल मात्र अचिंत अपनी शक्ति के प्रभाव से जिस समय केवल वो अपनी तटस्था शक्ति से युक्त होकर के रहते हैं उस समय उनका जो अंश होता है वो है, इसीलिए गीता ने कहा ममई मांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। कृष्ण का अंश है किंतु कैसा है? तटस्थ, अर्थात भगवान से उसका भेद भी है, भगवान से उसका अभेद। अभेद इसलिए कि भगवान चिन्मय है, जीव भी चिन्मय है, वो भी स्वतंत्र इच्छा है, स्वतंत्र रूप है, गुण है, क्रियाएं हैं, उसी प्रकार से जीव का अभिबद्ध होकर के ये सब ढका हुआ है। ये सब बतलाने पर लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, और प्रिंसिपल और प्रोफेसर लोग भी इनकी ये सब व्याख्या को सुनने के लिए पूछा। और कुछ जो ऐसे थे जिनके अंदर में देश था कि हमारा ये छात्र और हमको पढ़ाएगा, इसलिए वो बिगड़ गए, उन लोगों में ये सब कुछ वाद विवाद होने लगा। अंत में गुरु जी ने कॉलेज ही छोड़ दिया, इसे इन नास्तिकों के साथ में बैठ करके हमारा भजन नष्ट हो जाएगा। और जब इनको हम पढ़ाते हैं ये हमको क्या पढ़ाएंगे, हमको लौकिक विद्या नहीं सीखना है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कभी आकाश का तार है और पृथ्वी का बालू गिनने के लिए मैं जगत में जन्म नहीं लिया। जब उनको वहाँ पर कलकत्ता के सर्वप्रथम
कलकत्ता विश्वविद्यालय
में
ज्योति विभाग के प्रधान
ज्योतिष विभाग का ये विभाग दिया जा रहा था, मैंने ग्रहण नहीं किया। किंतु जब तक प्रभुपाद जीवित थे तब तक वो स्थान रिक्त रहा उनके लिए, आशुतोष मुखर्जी ने इसको रखा। उसी तरह से इन्होंने कहा जैसे ये हमको जरूरत नहीं है और छोड़ करके संपूर्ण रूप से तब 1919 में वो चले आए और इसके बाद में मठ में ही रह करके सेवा करने लगे। उस समय में मठ की स्थिति ऐसी थी कि किसी तरह से एक एक पैसा दो दो पैसा भिक्षा करके मर चलता था। बड़ी बड़ी बड़े बड़े घरों के पढ़े लिखे लड़के उस समय में योगदान कर लिए, किंतु खाने के लिए क्या, बहुत मुश्किल था। इसी प्रकार से थोड़ा सा चावल उसमें सजना पेड़ का पत्ता दे करके साग सिद्ध करके उसके साथ में खाते पीते, बहुत बैराग्य के साथ में। चप्पल खड़ाऊने और ये सब नहीं, केवल लकड़ी की वो क्या
खड़ाऊ
मैंने जिसके पैर में ये ऐसा होता है उसको खड़ाऊ,
अंगूठी वाला, अंगूठा वाला,
और वो ऐसा कि उसमें आता, उसको पान करके ब्रह्मचारी लोग रहते, और कपड़े एकदम छोटे छोटे सब मार्किंग मोटा मोटा। आजकल तो ब्रह्मचारी दे करके मठ छोड़ करके भागेंगे, नाम सुखुड़ाएंगे, और वो यदि भोजन मिलेगा तो कोई आएगा ही नहीं, अजय इसके लिए नहीं आए। इस प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे किसी प्रकार से, और नियमित में संख्या पूर्वक हरि नाम इत्यादि करना, क्लास ठीक से अटेंड करना, और दिन रात उसी के अंदर में लगे रहते, कृष्ण भजन में लगे रहते। भाई गुरुनिष्ठ होते थे सभी लोग। तो उस समय में अभी बहुत से थोड़े से लोग, मायापुर की स्थिति थी, वहां पर कुछ लोग थे प्रभुपाद कठोर वैराग्य रखते थे, कोई स्त्री से मिलते नहीं थे, उसको दीक्षा नहीं देते थे महिलाओं को। सबसे पहले सुरवासिनी पिसी माँ को उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जैसे आप केवल पुरुषों को ही जीव समझते हैं, आप महिलाओं को जीव नहीं समझते, महिलाओं श्रद्धालु नहीं होती, ये केवल घृणा की वस्तु हैं, ये भगवान का भजन नहीं करेंगे, ये सब समय माया नहीं रहेंगी। प्रभुपाद जी उत्तर नहीं दिए, जैसे आ जाओ उनको लेकर के और दीक्षा दिया। इसके बाद में धीरे धीरे तीन चार महिलाएं थी बड़ी विदुषी प्रफुल्ल मन आज ना प्रियतमा इत्यादि ये और भी बहुत सी। पर उस समय में मायापुर में ये ब्रह्मचारी लोग रहते थे, बड़े बड़े उच्च शिक्षित, जैसे बन महाराज जी समय थे उसके पीछे में आए, नरहरि प्रभु थे, ये सब बच्चे सब 18 से लेकर के 20 बरस 22 23 24 बड़े पढ़े लिखे सकते। उस समय इनको अपने आप बर्तन मांजना पड़ता है, अपने आप सब काम करना पड़ता है। उत्सव होने पर वो नादा एक होता है, उन लोग देखा कि खाते हैं, और उसी में सब उसमें मिट्टी के बर्तन में बड़े बड़े उसमें दाल तरकारी सब्जी रखा जाता, तो उसके लिए ब्रह्मचारी ये सब जो पढ़े लिखे हैं उनको भेजा जाता था, ये जाओ कुम्हार के घर से ले आओ। तो वहाँ के जो जितने मुसलमान हैं, वहाँ पर मुसलमान प्रधान भाव और आदमी, वो लोग इन बच्चों को चिढ़ाते थे, हाय है तुम्हारे की दुर्भाग्य कोई जादू मंत्र दे दिया है, जैसे कि इन लोगों को इतने बड़े बड़े घर के बड़े बड़े शिक्षित लड़के और ये सब जितने मजदूर नहीं करते उसे ये सब कराता है, बर्तन मजवाता है, अपनी सेवा करवाता है, इनसे बगीचे खुदवा करके और फूल लगवाता है, ठाकुर जी की सेवा कराता है, और इनकी मति को भ्रम कर दिया है। ये बच्चे घर नहीं जाते, भजन नहीं करते, घर नहीं जाते, माता पिता को स्नेह भी छोड़ दिया है, ऐसा जाने कैसे वशीभूत कर रखा है। इनको चिढ़ाते थे, उनको तुच्छ समझते थे, जैसे यहाँ पर भी ऐसा देखा था जब हम लोग आए, यहाँ के लोग समझते थे कि कैसे ये बेवकूफ़ हैं, ये क्या करने आए हैं, अपने माता पिता और ये सब छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके, बड़े धन संपत्ति छोड़ करके यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, उनको तुच्छ समझते। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं
वो ब्रह्मचारी लोगों को जो भजन करने आए हैं ये छोड़ करके उनको कुछ तुच्छ समझते हैं लोग, उनको कोई सम्मान नहीं देते, किंतु जरा वैसा होकर के दिखलाए तो वो समझेंगे। बड़ा कठिन है यदि इतना जो छोड़ करके आ करके माता पिता भाई बंधु स्नेह और ये सब छोड़ करके भजन करना, चाहे वो निरंकर भी हो किंतु वो निरंकर नहीं, वही अक्षर का ज्ञान उनको है, अक्षर वस्तु भगवान का, ये सहज नहीं है। उस समय में मठ के लोगों को बहुत हीन दृष्टि से लोग देखते थे, किंतु ये आकर के 18 वर्ष की उम्र में ही प्रभुपाद जी को कहा, जब प्रभुपाद जी आपकी ये जमींदारी की व्यवस्था नहीं होती ठीक से, कोई मालूमजारी नहीं देता है, मुसलमान बड़े बड़े गुंडे हैं सब अभी भी हैं, तो ये मालूमजारी नहीं देते और ब्रह्मचारियों को मठ को अत्यंत तुच्छहीन समझते हैं, हमारे ऊपर में भार दे दीजिए मैं इनको ठीक कर दूँ, प्रभुपाद जी का विश्वास इन पर नहीं होता था। तो एक दिन और उन्होंने कहा तो अच्छा तो तुम देखो तो कहे आज से ये हमारा मैनेजर रहा मायापुर का, मायापुर का मठ जितना जो कुछ देखना सुनना करना धरना मालगुजारी वसूल कराना और सब कुछ व्यवस्था जितनी होगी ये सब ये करेगा मैनेजर हमारा रहा। होने के दूसरे दिन ही वहाँ पर एक बड़ा भारी कटहल है, अभी भी वो कटहल का पेड़ है, बस वहीं कहा जैसे हमारे लिए एक चेयर डाल दो और एक टेबल दे दो और हमारे लिए एक गुमास्ता चाहिए, हमारे लिए एक चौकीदार चाहिए और हमारे लिए एक घोड़ा चाहिए। यही क्या कर रहा है, एक सुंदर घोड़ा उस समय बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास, ये टट्टू और ये सब नहीं, बहुत सुंदर वो घोड़ा इनके लिए और एक मुसलमान को ही उन्होंने चपरासी रखा, एक गुमास्ता रखा और वहीं पर बैठ गया और इन लोगों को सतनी बिछा करके वहीं पर दे दिया और काटा था। उन्होंने कहा जैसे सबसे बड़ा मुसलमान मुझे जो गुंडा आदमी है पत्नी जो कि मालगुजारी नहीं देता दूसरों को नहीं देता उसको पकड़ करके ले आओ। जैसे उसको कैसे पकड़, तुम जाओ तो अरे मैनेजर बाबू ने बुलाया और उसको पकड़वा करके ले करके आए और आके कहा जैसे इसको अभी तुरंत बांध दो हाथ पे और खाट के नीचे दे दो
टेबल के नीचे
टेबल के नीचे और उसको दो कोड़े लगाओ। कितने आदमियों की भीड़ लग गई, अब वो हाथ जोड़ करके ठेगी आने लगा कहा अभी तुम जा करके या किसी से मंगा करके मालगुजारी पहले दो तब इसके बाद छोड़। साथ ही साथ में उसके घर वाले आए उसका वो दे दिया, इसके बाद में ऐलान किया जो दो दिन के अंदर में जितनी जिसकी मालगुजारी बची हुई है वो पूरा यहाँ पर दे दे और नहीं तो
खैर नहीं किसी का।
बस साथ ही साथ में दो चार दिनों के अंदर में उस समय में 500 रुपया बहुत अधिक होता था, 500 रुपये का मूल्य था, साफ मालगुजारी सब हो गई और थक थक सब कांपने लगे, अब मत का विरोधी कोई करने वाला नहीं आया। थोड़ी देर सब लोग देख करके तब ये मठ का नाम होने लग गया। उसी समय में एक रेलवे डिपार्टमेंट के बड़े बाबू और एक गार्ड, वो वहाँ गार्ड नहीं वो हेड टीसी या तो वो आए बांकुड़ा से, तो उस समय में इनसे उम्र में अधिक थे और उस समय बड़े ठाट पाट से, उस समय में गार्ड होना या किसी वो होना ये सब साधारण बात नहीं थी, अंग्रेजी लोग अधिक होते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी ये सब ये अंग्रेजी लोग होते थे, उस समय इंडियन नहीं होते थे, विशेष करके सिविल ये सब जितने होते थे बड़े बड़े अफसर सब वही लोग होते थे, अच्छा वकील वही लोग होते थे, प्रिंसिपल प्रोफेसर वही होते थे। तो उस समय में जब वो आए तो वो दर्शन कर रहे थे, देखा तो अद्भुत देख करके बड़े प्रसन्न हुए, चैतन्य मठ। उस समय में दोपहर हो गई, इनसे भेंट हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए, तो वहाँ से आए हैं बांकुड़ा से आए हैं। उन लोगों के लिए कहा जैसे आप लोग तब देर हो गई, आप लोग यहीं पर प्रसाद थोड़ा सा पाइए। उन्होंने कहा जी सर तो बहुत बेला हो गया हम लोग चले जाएंगे, नहीं आप लोग ठहरिए यहीं पर सरोवर है गौरकुंड राधा कुंड में स्नान करके यहाँ पर चले गए। तो उन्होंने स्नान करने गए, इतने में उन्होंने क्या किया ठाकुर की तरफ भूख लग रहा तो लग गया था, किंतु इन लोगों को कुछ प्रसाद देना है और उसमें वही साग और अन्न माड़ भात इत्यादि
जो कुछ थोड़े से रूप में हुआ था। तो इन्होंने, ये तो बड़े घर के हैं, तो सोचा कि इनको कुछ आदर करना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ में स्टोव जला करके या आग से साथ ही साथ में चावल में गर्म करने के लिए पानी गर्म करने के लिए दिया, और उसी में साथ ही साथ में चावल छोड़ दिया और मूंग की दाल छोड़ दी बांध करके एक कपड़े में, और उसी में दो एक आलू छोड़ दिया और कुछ उसमें रख। इसके साथ साथ में वो अन्न हो गया, अन्न का मांड हटा करके आलू को निकाल लिया और उसको काट करके उसको सुंदर डालना बनाया, आलू का
दम
दम बनाया बहुत सुंदर फर्स्ट क्लास, और उसमें से आधा रख लिया, उसको वो
भरता
बना दिया, और दाल को निकाल करके उसका एक भरता बना करके और आगे का दाल बना करके फोड़न दे करके बना दिया। अब कितना हो गया? चार पाँच हो गया ना, और गरम गरम खूब टेस्टफुल उनको ठाकुर जी का भोग लगा करके उनको बैठाया, और उन लोगों ने प्रसाद पा करके बड़ी, एक तो भूख खूब लगी हुई थी
गरम गरम,
हाँ सर गरम गरम ये सब चीज़ें बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट लगी, खूब तृप्ति के साथ उन्होंने प्रसाद। जाने के समय प्रभुपाद जी का दर्शन इन्होंने करा दिया और कुछ हरि कथा इनको कहा, हरि कथा सुनते ही बड़े प्रभाव थे, प्रभुपाद जी का दर्शन किया और वहाँ से लौट करके फिर इनके पास में आ करके इनके साथ में बोली जी अब हम लोग जा रहे हैं, एक तो हम लोग आज से कुछ हम लोग डोनेशन करना चाहते हैं, मैं महीने में पाँच रुपया दूंगा महीने में, और जो बड़े बाबू उनसे बड़े अफसर थे
2 रुपया,
उन्होंने कहा जी मैं 2 रुपया महीने में दूंगा, और इन्होंने कहा जी 5 रुपया। उस समय मैं समझता हूँ कि 175-60 या ऐसे ही महीना उस समय, आजकल जहाँ पर 5,000-10,000 रुपया मिलता है लोग, उस समय में 5 रुपया जब उन्होंने दिया तो उस समय उनका 15 दिन का जितने मठवासी थे सबका उसी से ही चावल दाल और सब्जी इत्यादि हो गई नमक मसाला, और 2 रुपया वो 5-7 रुपया महीना आने लग गया, कुछ थोड़ा सा बढ़ गया इनका, उसे मठ संचालित होने लग गया। इसके बाद में वो आते जाते रहे, उनका पहले नाम था
अतुल कुशल
कृष्ण गोस्वामी
बंदोपाध्याय।
2-1 वर्ष के बाद में हरि कथा सुनते 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 कहा अब मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं मठ में रह करके मठ की सेवा करूंगा। तो मठ के वासी जितने थे उन लोगों ने सोचा कि ये जाएंगे तो 5-7 रुपया बंद हो जाएगा, तो मठ कैसे चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आया यहाँ और हमको कहा कि महाराज जी मैं 1,000 रुपया महीना दूंगा, आज देने वाले बहुत हैं, 1,000 रुपया मठ हम देंगे आप मठ को चलाए, हम लोग बड़े प्रसन्न। जब वो घर छोड़ करके आए तो सोचे नहीं जाए भाई ये मठ में आएगा तो उसको खिलाना पड़ेगा और कपड़ा भी देना पड़ेगा, 1,000 रुपया भी बंद हो गया, तो इसीलिए लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो मैं आऊँगा, वो 5 रुपया का वो 5,000 रुपया आ जाएगा। तो सचमुच उन्होंने घर छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी और चले आए, बड़े बाबू नहीं आए, वो वहीं से रह करके भजन करते थे और मठ में आते जाते। बड़े बाबू भी साधारण नहीं, गौड़ीय कंठहार उन्हीं का लिखा हुआ है, अतीन्द्र प्रभु साधारण नहीं, उनका गौड़ीय कंठहार अभी भी चलता है, और ये इन्हीं का नाम अपरात सारंग गोस्वामी महाराज जी का नाम हुआ। जब ये मठ में आए तो भिक्षा करने कैसे जाते, कार कहीं से मांग लेते उधार कुछ किराया देकर के, कार में बैठ करके जाते, 2-4 साथ में अच्छे अच्छे ब्रह्मचारियों को लेकर के बड़े बड़े सेठों के यहाँ पर पहुँच जाते और उनकी गद्दी पर बैठ करके और उनको हरि कथा सुनाते, थोड़ा ही कम लग जाते उनकी, और कुछ लेकर के गाड़ी गाड़ी चावल गाड़ी गाड़ी सब्जी और ये सब आने लगी मठ में, सब ब्रह्मचारी सन्यासी कम से कम तो 500-600-1,000 आदमी मठ में रहने लगे और चारों तरफ फिर उत्सव होने लगा, स्टैंडर्ड बढ़ गया। किंतु मैं समझता हूँ कि पहले का जो तो था भक्ति का भाव, और जब वैभव होने के बाद में हुआ तो फिर क्या जी क्या बदल गया। जैसे आप लोग देखिए, कोई खाने की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, वैराग्य का नाम नहीं, और देखिए भक्ति जाने कैसी, जब एक आदमी आता है 2 आदमी जाता है, 2 आदमी आता है तो 3 आदमी जाता है, पहले ऐसा नहीं था, बहुत साधारण रूप में रहते थे और भजन करते थे। तो ये वही उनको अपना परम बंधु मानते थे, वो भक्ति सारंग गोस्वामी, इन्हीं को उन्होंने उपाधि दी थी
पाषंड गजई,
पाषंड गजई का सिंह, जो भक्ति के विरोधी है वो पाषंड हाथी के समान है, और उनको शासन करने के लिए कैसे हैं सिंह के समान। और भी जितने मठ के थे लोग सब गुरु जी का बहुत सम्मान करते थे। एक समय में वहां पर कुछ दिनों के बाद में मायापुर सर्वत्र समस्त जगत थोड़ी सी प्रभुपाद की जमींदारी के अतिरिक्त जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है जिसको जोग पीठ कहते हैं, और थोड़ा सा जमीन वो दीघी बल्लाल दीघी, बल्लाल दीघी मैंने क्या
बल्लाल सेन
लिखु महाराज, महाराज जो पृथ्वी को बराबर किया था उनका ये पृथ्वी कुंड नाम था, पीछे से बल्लाल दीघी उसको और थोड़ा सा बड़ा किया तो उसका नाम हुआ बल्लाल दीघी, बल्लाल ढीकी ढीकी मैंने बल्लाल सेन राजा थे बंगाल के लास्ट राजा, जिनके दरबार में कवि जय देव थे, उन्होंने बहुत उनका बड़ा भारी महल था, पीछे से वो गिर करके टीला हो गया, उसी को बल्लाल बल्लाल
ढीपी
ढीपी वही केवल जमींदारी में था और बाकी सब मुसलमानों का चारों तरफ में आधिपत्य था। विशेष करके अभी जहाँ पर प्रभुपाद की समाधि है जिसको चंद्रशेखर भवन कहते हैं, वहाँ पर मुसलमानों का कब प्रभाव था उस समय में इन्होंने क्या किया प्रभुपाद को कह करके, और एक दिन में जितने कब बरगाह थे सबको वहाँ से हटा, और वहाँ पर नए नए पेड़ छोटे छोटे बड़े बड़े फूल और आम के पेड़ जो थोड़े से ऊंचे हो सकते हैं वो सब चारों तरफ लगा करके बगीचा बना दिया, और उसको चारों तरफ से ईंट से गुथवा दिया। मुसलमान पहुंचे जी ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा तुम लोग की मस्जिद कब्रगाह को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से ईंट की प्राचीर दे रहे हैं, और दूसरे दिन वहाँ पर पेड़ों को लगा करके और सबको हटा दिया। इस प्रकार से चैतन्य मठ पूरा एकदम पीछे से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SP कमिश्नर बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कब्रगाह कभी था ही नहीं, इसका चिन्ह ही नहीं है, यहाँ पर तो बड़े बड़े पेड़ पौधे ये सब दिखते हैं, अंत में वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तब से मायापुर का भी रंग ही बदल गया। एक समय इतने बड़े वो तेजस्वी थे गुरु सेवा के लिए समर्पित, किसी भी व्यक्ति के लिए भक्ति के लिए गुरु निष्ठा को प्रबल होनी चाहिए, यदि गुरु निष्ठा नहीं है तो वो भजन में अग्रसर नहीं हो सकता है। गुरु निष्ठा का लक्षण क्या है, गुरु निष्ठा का गुरु के जितने अनुगत व्यक्ति हैं उनके प्रति आदर और प्रीति रहेगी नहीं रहेगी, गुरु जी का एक कुत्ता भी होगा तो उसके लिए अत्यंत प्रिय होगा, ये गुरु में निष्ठा है। यदि गुरु के विरुद्ध किसी ने कहा तो हनुमान जी जैसे हैं उनका जीत मैंने गदा से उसका मुंड तोड़ देते हैं, ऐसे ही गुरु या वैष्णव की या महाप्रभु के विचार इत्यादि का कोई खंडन करने वाला विरोधी है तो उसके जीवा को स्तंभन कर देना, यदि हाथ से वो लिखता है तो उसके हाथ के स्तंभन कर देना, उसके विचारों का उत्तर देकर के उसका खंडन करना, जैसे वैसा बोलने का साहस न कर सके, इसलिए गुरु जी में ये बातें थी। प्रभुपाद के विचारों को पालन करने के लिए आदेश को पालन करने के लिए वो सब कुछ कर सकते थे, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था मैं अपने गुरु जी की बात को प्रचार करने के लिए कृष्ण की कथा महाप्रभु जी की बातों को प्रचार करने के लिए मैं पृथ्वी को क्या करूँगा काट दूंगा या क्या, एक प्रभुपाद प्रभु के एक पैसा के लिए रक्षा करने के लिए
लाखों व्यक्ति को खून कर सकता,
इसका अर्थ लोग नहीं समझ सके, अपराधी उनकी सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, तो गुरु जी का यही था, सब कुछ गुरु जी के लिए वो करते, गुरु जी के विरुद्ध में कोई कुछ लिखा या कुछ कहा तो उसका समुचित उत्तर देते थे, कभी भी वो डरते किसी से नहीं थे, बड़े तेजस्वी थे। प्रभुपाद के समय में प्रभुपाद जी के एक भाई थे, प्रभुपाद जी से उम्र में कुछ बड़े थे, उनका नाम था ललिता बाबू।
छोटे थे
ललिता बाबू। जब तक प्रभुपाद जी थे तब तक तो कुछ नहीं, इसके बाद में प्रभुपाद जी के गत होने पर वो अपने को आचार्य बनाना चाहते थे, बनना चाहते, इसलिए धीरे 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 उन्होंने सहजी उला में रहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर के ये लड़के प्रभुपाद जी का विरोध करते थे, इनकी प्रशंसा को और इनके व्यापक ये सब नाम को वो सह नहीं सकते थे, इसलिए कुछ गड़बड़ करते थे। तो उनका स्वरूपगंज में एक प्रभुपाद जी का भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि और वहीं पर उनकी भजन स्थली है, जहाँ से मायापुर को देख करके उन्होंने विचार किया, यही मायापुर यही संस्कृत महाप्रभु का जन्म स्थान है, जगन्नाथ दास बाबा जी को मिले थे। तो उस स्थान को प्रभुपाद जी कहते थे चाहे कोई ऐसा नहीं है जो ललिता बाबू को वहाँ से हटा करके गौड़ीय विचारधारा के अंतर्गत में ले आए। तो एक बार कहने पर ये उन्होंने कहा जाता तो आप हमको आदेश दे दीजिए, नहीं तो पीछे हमको कुछ दोष मत देंगे, पर्याय जाओ। उन्होंने ऐसा किया, 10-20 ब्रह्मचारियों को साथ ले लिया और एक ब्रह्मचारी को कह दिया कि विनोद आ रहा है, बड़ा भयंकर आदमी है और बड़े बड़े लठ है तो उसके साथ में आ रहे हैं,